الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ کہف شروع کر رہے ہیں. سورہ کہف مکی سورت ہے. کہف کا معنی غار کا ہوتا ہے، اور ایسا غار جو کشادہ ہو. ویسے تو غار بھی عربی کا لفظ ہے، مگر کہف اور غار میں یہی فرق ہے کہ غار کا دھانا جو اس کا منہ ہوتا ہے وہ بھی یعنی بہت کھلا نہیں ہوتا، اور آگے بھی کوئی بہت کھلا نہیں ہوتا، مگر کہف جو ہوتا ہے وہ کھلا غار ہوتا ہے. اور آج دنیا میں ایسے غار واقعی پائے جاتے ہیں جو کئی کئی میل کے برابر کشادہ ہیں اندر سے، سمندروں میں بھی ہیں، زمین پہ بھی ہیں. یہاں تک کہ ایسے بھی غار پائے جاتے ہیں جن میں پورا ایک جہاز لینڈ کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے بھی غار ہیں. تو اس کا نام کہف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ہر سورت کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. بعض سورتوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور بعض کا صحابہ کرام نے بعد میں رکھا، بعض کا فقہا نے رکھا. اسی لیے بہت ساری سورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ملتے ہیں، مگر اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الکہف رکھا ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سورہ اسراء کے زمانے کا نزول جو ہے وہی اس کا زمانہ نزول بھی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، تو یعنی کہ شروع کی صورتوں میں سے ہے. اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگ قبول کر رہے ہیں اور جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ دھڑکا لگا کہ یہ نہ ہو کہ اسلام بہت پھیل جائے. وہ یہود مدینہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس انبیاء آئے ہوئے ہیں، تو یہ نبیوں کو پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم ان سے پوچھیں. تو علماء یہود نے کہا کہ تم ان سے تین باتوں کے متعلق سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو وہ واقعی نبی ہیں اللہ کے، اور اگر وہ نہ بتا سکے تو پھر وہ جھوٹے ہیں. تم ان سے پہلا سوال کرو ان نوجوانوں کے متعلق جو پہلے زمانے میں نکلے تھے کہ ان کا کیا ہوا. ان کا واقعہ بہت تعجب خیز واقعہ ہے. اور دوسرا ان سے متعلق پوچھو جس کو اللہ نے زمین کے مشرق اور مغرب کا سفر کرایا، اس کی خبر دیں. اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ اس کی کیا حقیقت ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کے یہ سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا کہ آپ کے پاس وہی آ جائے گی. پتا ہوتا تھا کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ وہی لے کے آ جائیں گے. تو انہوں نے فرما دیا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اگر اللہ نے چاہا. और इसके बाद ये हुआ कि 15 दिन तक वही नहीं आई, ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और अहले मक्का ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सच्चे नबी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ के बारे में और ज़ुल्करनैन के बारे में और रूह के मुतालिक आयात नाजिल फरमाई, जिनमें रूह के मुतालिक जो सवाल था वो हम सूरा बनी इसराइल में पढ़ चुके हैं। उस आयत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली सूरत में रखवाया क्योंकि वो मुख्तसर जवाब था, जबकि असहाबे कहफ का और ज़ुल्करनैन का किस्सा लंबा था, जो कि इस सूरत के साथ मैच करता है, जबकि वो रूह का जो सवाल है कि अल्लाह ताला के अमर से यार तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया, वो एक ही आयत में उसका जवाब दे दिया गया और उसको सूरह इसरा में रख दिया गया। ये जो सूरत है इसकी बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत है, और हम सब के लिए बेइंतहा जरूरी है कि हम इस सूरत को समझें, इस सूरत को सीखें, इस सूरत को पूरा नहीं तो कम अज कम इसकी पहली 10 आयात को याद कर लें। मैंडेटरी, सब के लिए जरूरी होना चाहिए। अगर हम ड्राइविंग सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, शॉपिंग करना सीख सकते हैं, कंप्यूटर और फोन यूज करना सीख सकते हैं, तो 10 आयात याद करनी, इनको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं। पैदाइशी हम ये सब काम नहीं सीख के आए थे, हमने बाद में सीखे हैं। मैं कितना एम्फसाइज करूं, कितना मैं जितना भी आपको कर सकती हूं ना, मैं उतना आपको कहूंगी कि आप लाजमी तौर पे इस सूरत की 10 आयात को याद कर लीजिए। क्यों? ये आपकी हिफाजत है, आपकी हिफाजत है ये। आप कोविड का वैक्सीन लगाते हैं क्यों? वो आपकी हिफाजत है, इसलिए आप लगवा लेते हैं, चाहे आपको उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट पता भी नहीं है, तब भी आप रिस्क ले रहे हैं। और ये जिसका नबी अलैहिस्सलाम सच्चों के सच्चे जो हैं, जिन्होंने बता दिया कि ये हिफाजत वाली, महफूज रखने वाली सूरत है, उसके बाद हम फिर भी इसकी 10 आयात को भी याद ना कर सके। इसकी फजीलत क्या है, एक एक करके मैं आपको बताती हूं, और जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या लिसनर हैं, आप इसके बाद खुद फैसला कीजिएगा कि आपने इस सूरत को या इन 10 आयात को याद करना है या नहीं। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक सहाबी जिनका नाम बरा बिन आजिब था, इस सूरत की तिलावत कर रहे थे, उनके घर में घोड़ा बंधा हुआ था, जब उन्होंने तिलावत की तो घोड़े ने उछलना बिदकना शुरू कर दिया। हजरत बरा ने जब गौर किया तो उन्हें आसमान की तरफ एक बादल नजर आया जिसने इन पे साया कर रखा था, और रिवायात में आता है कि उसके अंदर रोशनी थी उस बादल के अंदर। जब वो रुकते थे तो वो ऊपर चला जाता था, जब पढ़ते थे तो वो नीचे आ जाता था। तो उन्होंने इस डर से कि कहीं ये ना हो कि घोड़ा बिदकता हुआ, उनका बच्चा करीब पड़ा हुआ था, कहीं ये ना हो कि उसके ऊपर स्टेप कर दे, तो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। और अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात बताई तो आपने फरमाया ये सकीनत है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की तिलावत पर नाजिल हुई। सकीनत, सुभान अल्लाह, यानी इस सूरत पे सकीनत आई थी। सकीनत यानी जब फरिश्ते आते हैं ना जहां पे, तो वहां पे सकीनत उतरती है, तो वो फरिश्ते उतर रहे थे इस सूरत को सुन के, और उलमा इसीलिए कहते हैं कि जो चाहता है कि उसको सकीनत हासिल हो ना, आपको बेचैनी होती है या आपको ना बेकरारी रहती है तबीयत के अंदर, कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो आप ये सूरत को पढ़ा करें, इसके साथ सकीनत नाजिल होती है। दूसरी बहुत बड़ी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज कर ली, वो फितना दिज्जाल से बचा लिया गया। यानी क्या मतलब कि दिज्जाल इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना दज्जाल बड़ा फितना है। उससे बचाव के लिए आपने किसी चीज से बचना हो तो आप क्या करते हैं, दिमाग में क्या आता है आपके, बॉडीगार्ड्स रख ले, आपके जहन में आता है कोई बीमारी या तो वैक्सीनेशन लगा ले, बचाव की कोई और सूरते को बुलेट प्रूफ पहन ले, ये चीजें आती हैं ना जहन में। इमेजिन करें, इस सबसे ज्यादा पावरफुल सूरतुल कहफ है जो इतने बड़े फितने से इंसान को बचाने वाली है। सहाबाए कराम बैठे हुए इसके बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि हमें ऐसे लगा कि जैसे दज्जाल यहीं पे दरख्तों में छुपा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने पूछा क्या बात है, बताया हम दज्जाल के बारे में बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे होते हुए आ गया तो मैं काफी हूं उसके साथ निपटने के लिए, और अगर मैं नहीं हुआ, जैसे आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो फिर हार किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो जो उसको देखे उसको चाहिए कि सूरह कहफ का शुरू का हिस्सा पढ़े, इसकी ओपनिंग यानी पहली 10 आयात इतनी जरूरी है, ये 10 आयात। और ये कैसे बचाती है, उस फितने से कैसे बचाएगी, अभी आप कहते हैं याद कर लें, तो क्या कोई काफिर भी रट ले तो फिर उसको भी, तोते को आप रटा दें वो भी फिर इसी में आ जाएगा, नहीं, हिफाजत करने को कहते हैं, यानी इसके अल्फाज की भी हिफाजत, इसके माने की भी हिफाजत, इसको समझ लें कि ये आपको मैसेज क्या दे रही है या आपको तरीके बताएगी आपने बचना कैसे है। सूरत जबरदस्त सूरत है ये, या आपको ऐसे तरीके बताएगी कि जिनसे आप अपना बचाव कर सकेंगे। अब समझ आएगी तो तरीके पता चलेंगे ना। आपको मैं एक रेसिपी कह दूं, आप ये रेसिपी रट लें, याद कर लें इस रेसिपी को, तो किस लिए, ताकि जब आप बनाएं तो फिर आपको याद हो कैसे ये चीज बनानी है। इसीलिए इसको याद करने को कहा गया ताकि आपके जहन से नहीं निकले कि क्या तरीका है इससे बचने का दज्जाल से। इसी तरह तीसरी रिवायत सुनी इब्ने मरदबे की है कि जुम्मे के दिन जो शख्स इस सूरत को पढ़ ले उसके पैर के तलवों से लेकर आसमान की बुलंदी तक उसको नूर मिलेगा जो कयामत के दिन खूब रोशन होगा। सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत में आता है कि इतना नूर मिलेगा जुमे के दिन जो इसको पढ़ ले कि बैतुल्ला शरीफ तक नूरानियत हो जाती है, यानी जहां से भी जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां से अल्लाह के घर तक नूर ही नूर हो जाएगा। वाकई में भी है कि जिसने सूरह कहफ इसी तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई है उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा। आपको पता है कयामत के दिन कितने अंधेरे होंगे, कितने अंधेरे होंगे, उस अंधेरे के अंदर नूर चाहिए होगा। अब इस नूर के लिए सूरतुल कहफ की तिलावत कीजिए। इस तरह एक और रिवायत में आपको बताती हूं कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है वो 8 दिन तक हर किस्म के फितनों से महफूज। 8 दिन मतलब क्या, अगले जुमे तक, यानी अगले जुमे को आप दोबारा उसको पढ़नी पड़ेगी, यहां तक कि अगर दज्जाल भी आ जाता तो उससे भी बचा दिया जाएगा। यानी क्या मतलब, हर किस्म के फितनों से। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल आप सब मानते होंगे कि हम इतने फितनों के दौर से गुजर रहे हैं कि हर तरफ फितने ही फितने, हर कोई परेशान है कि हम क्या करें, इतने फितने हैं हम कैसे इनका मुकाबला करें। और हमारा दीन हर चीज में हमारी रहनुमाई करता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया कि वो सिर्फ उस जमाने के लिए तो हिदायत थी, उस जमाने के लिए तो रहनुमाई थी, उसके बाद वाले लोग क्या करें अब उनको समझ ही नहीं आ रही। नहीं, सुभान अल्लाह, ये दीन इतना मुकम्मल है, ऐसा जामे है कि हर जमाने के लोगों के लिए उनके मसाइल को, उनके जमाने में होने वाले आने वाले फितनों को उनको एड्रेस करता है, उनके से हिफाजत का सामान देता है। तो इसलिए अगर हम यही इस तरफ कुरान की तरफ आते ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम जानेंगे। और ये देखें कि यानी दज्जाल तो बहुत बड़ा फितना है ना, जाहिर है जो चीज दज्जाल से बचाने वाली है तो बाकी जो छोटे छोटे फितने हैं तो वो तो वैसे ही कवर हो गए ना, वो तो उसमें उनसे तो हिफाजत हो ही गई अगर दज्जाल जैसे फितने से हो सकती है। और बाज रिवायात में आखिरी 10 आयतों के मुतालिक भी आता है, बाज में 3 आयात के मुतालिक भी आता है, बाज में पूरी सूरत के मुतालिक भी आता है। लेकिन अब आप ये देख लें कि जो 10 पहली आयात है ना, इनके मुतालिक वाली जो रिवायत है वो सबसे स्ट्रोंग है। ठीक है, तो आप कम अज कम इनको याद कर लें। एक और रिवायत आपका बताती हूं। एक जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ मदीना की तरफ जा रहे थे, वापस आ रहे थे जंग से। रास्ते में कयाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंट कर देते थे किसी एक सहाबी को कि वो पहरा दे, ताकि ये ना हो कि दुश्मन हमला कर दे, सब सो रहे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाद बिन बिशर को पहरे की जिम्मेदारी दी। सब सो गए, थके हुए थे, इबाद भी थके हुए थे, मगर उनको जागना था। जागने के लिए उन्होंने सुभान अल्लाह क्या तरीका किया कि आज हम जागने के लिए क्या करते हैं, हम टीवी लगा लेते हैं, हम फोन पकड़ लेते हैं, हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने जागने के लिए क्या इस तरीका इख्तियार किया, नमाज शुरू कर दी। नमाज में मशगूल है, इतने में एक दुश्मन आ गया, उसने देखा कि ये सारे सो रहे, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने एक तीर निकाला और तीर चला दी जो उनको जाके लगा। मगर नमाज की जो मोहब्बत थी और जो सूरत वो पढ़ रहे थे उसमें इतना शौक था उनको कि उन्होंने तीर निकाला और फेंक दिया। नमाज जारी है, उसने दूसरा तीर निकाला, फिर वो तीर जाके अंदर हड्डियों तक घुस गया। तब उन्होंने वो तीर भी निकाला और फेंक दिया और नमाज जारी रखी, इतना शौक था। तीसरी दफा उस काफिर ने फिर तीर निकाल के दाग दिया। अब ये अपनी जगह से हटे और दूसरे सहाबी को जगाया और क्या फरमाते हैं, अगर ये मेरी पर जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डाली होती तो मेरी जान भी चली जाती, तो मुझे ज्यादा अजीज था इससे कि मैं ये सूरत अधूरी छोड़ता। यानी इतनी मोहब्बत थी उस सूरत से जो वो पढ़ रहे थे। और वो कौन सी सूरत थी, सूरतुल कहफ। अब इस सूरत में हमने क्या पढ़ना है, क्या इसके मजामीन है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इस सूरत में आपकी जो फर्स्ट 10 आयाज है ना, इसमें अकीदा दुरुस्त किया गया, अकीदा और अमल को दुरुस्त किया गया। और आखिरी 10 आयाज है उनमें भी अकीदे और अमल को दुरुस्त किया गया। इसके मिडल में तक मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं कि आपकी एक इमेजिनेशन में एक खाका सा बन जाए आपके जहन के अंदर ना, कि क्या हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 4 स्टोरीज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला स्टोरीज क्यों बयान फरमाते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुरान की कोई भी स्टोरी ऐसे नहीं है कि जैसे आपके ये ड्रामे हैं, ये हैं, कुछ भी एक ड्रामेटिक चीज बता दी गई और उस तरह बस मेसमराइज करा, इसके लिए नहीं है। ये एक तो सच्ची कहानी है, हक है, फालतू नहीं है, बेकार नहीं है, फजूल की डिटेल्स नहीं है, टू द पॉइंट बात है और उसमें सबक है, मैसेज है। कहानी के जरिए क्यों? इसलिए कि हर इंसान कहानी से दिलचस्पी रखता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर एक को किस्से सुनने का शौक है। इसीलिए तो हम बड़े शौक से ड्रामे देखते हैं, नावल पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कहानियां अच्छी लगती हैं, इंसान की नेचर है। मगर वो लाखों कहानियां, बेकार की कहानी, ये सच्ची कहानियां। तो चार कहानियां हैं। पहली कहानी असहाबे कहफ के बारे में, और हर कहानी का एक मॉरल है, हर कहानी में एक आजमाइश का जिक्र है। असहाबे कहफ की कहानी के अंदर ईमान की आजमाइश का जिक्र है कि जब दुनिया प्रेशराइज कर रही हो, जब दुनिया सारी एक तरफ चल रही हो, जब हालात ना मुआफिक हो, दीन पे चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाए, दीन के बारे में शकु को शुभात डाल रहे हो लोग, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं, तब मैंने क्या करना है? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अल्लाह अकबर के ना खास्ता ऐसा एक वक्त आ जाता है, कोई मस्जिद नहीं रह जाती, कोई स्कॉलर बाकी नहीं बचता, इंटरनेट पे कोई ऐसा मवाद नहीं है जहां से आप कोई लेक्चर सुन लें, कोई बात सुन लें, कहीं से दीन की बात, सब खत्म कर दिया गया, सब खत्म कर दिया गया। और जो दीने इस्लाम पे रहेगा उसकी खैर नहीं है, उसके लिए थ्रेट है। क्या करेंगे ऐसे हालात? क्योंकि ऐसे हालात आ जाने हैं, ऐसे हालात आने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशीन गोई की है, जब दज्जाल आएगा, दज्जाल दज्जल से है ना, दज्जाल आएगा तो यही करेगा। पहले ये बात कर लेते हैं इसकी कहानियों की, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दज्जाल आएगा तो ये सूरत कि ये वाकयात कैसे बचाएंगे। फिर तो ईमान की आजमाइश हो गई ना, ये वाकया आपको बताएगा जब ईमान की आजमाइश आ जाए तो तुमने क्या करना है। दूसरा किस्सा बाग वालों का किस्सा है, जिसमें माल की आजमाइश की बात है कि जब माल इंसान के पास आ जाए तो वो दिमाग पे चढ़ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, और इंसान फिर भूल जाता है कि माल किसने दिया और मैंने किधर लौटना है वापस। अब वो बिल्कुल जहन से निकल जाता है, तनाव जो दिमाग पे सवार हो जाता है ना ये, तो उसका भी बता दिया गया इस किस्से में, ये सब टेम्प्रेरी है। तीसरा किस्सा मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का, इल्म की आजमाइश का। इल्म जो है बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इल्म तकब्बुर ले आए तो ये भी एक आजमाइश है। अगर इल्म आने के बाद इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझने लग जाए, उसमें बड़ाई का एहसास पैदा हो जाए, आजी खत्म हो जाए, तो इल्म के साथ जो फितना आ सकता है उस पर काबू कैसे पाना। चौथी बात जुल्करनैन का किस्सा है, इसमें जो पावर का, हकूमत का, पोजीशन का, कुर्सी का, मैं इंचार्ज हूं, मेरे पास ताकत है, इख्तदार है, ये भी एक फितना है। इस फितने पे कैसे, फितने का मतलब समझते हैं, टेस्ट है, टेस्ट आजमाइश, इस पे काबू कैसे पाना। और दज्जाल का साथ क्या ताल्लुक है इन सारी बातों का? एक्चुअली दज्जाल भी तो लोगों को यही कहेगा ना कि मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ, मैं खुदा हूं। तो ईमान का इम्तिहान, दज्जाल ईमान का इम्तिहान बनेगा। और याद रखिएगा एक बात, हर इम्तिहान आसान है, आसान है, मगर ईमान का इम्तिहान बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह मेरे ईमान को ना आजमाना। आपका जेवर चोरी हो जाए, आपके पैसे चले जाएं, आपका कारोबार बंद हो जाए, जॉब चली गई है, या किसी के साथ खुदा ना हास्ता कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी परेशानी आ गई है, कोई फौत हो गया है, कोई कुछ है, ये भी आजमाइशें हैं, लेकिन ईमान की आजमाई बहुत बड़ी होती है। तो वो इंसानों के ईमान को आजमाएगा। फिर माल की आजमाइश कैसी है उसके साथ, क्योंकि उसके पास खजाने होंगे, दुनिया के खजाने ना अल्लाह ताला उसके हाथ में दे देगा, सोना और ये चांदी और जो खजाने हैं जमीन के, वो उसके पीछे चलेंगे, है ना, जिसको चाहेगा देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा, कहेगा यहां से क्रॉप उगे, फसल उगे तो उगेगी, नहीं तो फसल खत्म हो जाएगी, खेतियां बर्बाद वीरान हो जाएंगी। तो उसके पास माल भी होगा। अच्छा, इल्म की आजमाइश, उसके पास इल्म भी होगा, वो लोगों को बताएगा कि तेरा बाप कौन था, क्या था, और फिर उनको जिंदा भी करके दिखाएगा, कोढ़ी को सही कर देगा, बीमारों को शिफा दे देगा, इस तरह कर देगा। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, अल्लाह ने उसको बनाया ना, उसके हाथ में ही अल्लाह ताला ये पावर दे देगा, इल्म भी इल्म से ही है ना। तो इल्म की आजमाइश, फिर पावर की आजमाइश, उसका कंट्रोल होगा दुनिया के हिस्सों के ऊपर, दुनिया में इधर से उधर जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल करेगा, हर तरफ उसकी हुकूमत हो जाएगी, मक्का और मदीना में नहीं दाखिल हो सकेगा, बाकी हर जगह जाएगा। तो ये आजमाइश होगी, ये उसके साथ ये सारी चीजें, ये सारे ट्रायल्स होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसका जिक्र करते थे ना, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था, आंखें खुल जाती थी और आवाज बुलंद हो जाती थी, क्योंकि इसके साथ ये इतना बड़ा फितना है। दज्जाल जो लफ्ज है, दज्जल से है ना, डिसेप्शन, पता ही नहीं चलेगा कि मैं धोखा खा रहा हूं, और इंसान धोखा खा जाएगा, धोखा खा जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मजबूत से मजबूत ईमान वाला ये ना कहे कि मैं उसके पास जाता हूं और मैं उससे मुकाबला करता हूं, नहीं, जो उसके सामने जाएगा उसका ईमान चला जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि उसके सामने जाएं और उसके सामने खड़े हों और उसके साथ मुकाबले के लिए कोशिश करें, नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा और इंसान फंस जाएगा उसके फितने में। तो इंसान को ये जो फितना है, ये असल में जो इस सूरह में भी बात है ना, इस सूरत का भी जो करने एक मौजू है, मजमून जो इसमें डिस्कस किया गया है, ईमान और मटेरियलिज्म की कश्मकश, इसी में ये सारे किस्से भी आ रहे हैं। एक तरफ ईमान है, एक तरफ मटेरियलिज्म है, दुनिया है, दुनिया की चीजें हैं, इख्तदार है, माल है, सामान है, और ईमान ही इसमें बचा सकता है। और क्या चीज बचाएगी, ये एक सूरत हमें बताएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखे के साल आने वाले हैं तुम्हारे पास, इसका मतलब पता चलता है ना कि दज्जाल से पहले भी धोखे के साल आएंगे। दज्जाल तो बहुत ही बड़ा फितना है ना, फरमाया धोखे के साल आएंगे। तो सहाबा ने पूछा कि क्योंकि वो सारे वसाइल, दज्जाल तो सारी चीजों पे काबू कर लेगा ना, कंट्रोल होगा उसका। सहाबा ने पूछा कि फिर उस वक्त हम खाएंगे क्या, तब जब सारा कुछ इस तरह होगा तो हम क्या खाएंगे। तो आपने फरमाया, तुम्हें तहमीद, तहलील, तस्बीह, तकबीर, ये काफी हो जाएगी। नहीं, कितनी ज्यादा मटीरियलिज्म से किनारा कशी करनी पड़ेगी, एक तरफ होना पड़ेगा, और बस इसी से पेट भरना पड़ेगा कि अल्लाह का जिक्र करते रहे। अब उसके लिए इतना ईमान होगा तो करेंगे ना। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसके बाद मैं इससे ज्यादा और एम्फसाइज नहीं कर सकती कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सूरत है हमारे समझने के लिए। एक रिवायत में ये भी आता है कि ये वो सूरत है जो एक दफा ही नाजिल हुई, और इसके साथ 70,000 एंजल्स, 70,000 फरिश्ते इसके साथ नाजिल हुए थे। इससे आपको पता चल सकता है कि इस सूरत की शान कितनी बुलंद है, कितनी जबरदस्त ये सूरा है। और इससे ज्यादा क्या बात बड़ी होगी कि आप इसका नाम देखें, क्या है, काफ, राइट। अच्छा, काफ क्या है, गार। हमेशा से इंसान इंसानों की हिस्ट्री देख लें, वो गारों को किस लिए यूज करते थे? पनाह लेने के लिए, हिफाजत के लिए। आप देखें, आप सरसरम ने गारे सौर में जाके पनाह ली थी ना, तो हिफाजत के लिए दुश्मन से। इससे तो इस सूरत की जबरदस्त नाम है सूरत का, सुभान अल्लाह। क्या आप दुश्मन से बचने के लिए पनाह नहीं चाहते? तो आ जाए कहफ में, सूरत अल कहफ, ये आपको पनाह देगी। आ जाए इस गार में, इस गार में आप महफूज रहेंगे। ठीक है, तो ये गार है। और एक और बात देखें, ये सूरत मिड में आती है कुरान करीम में। सुभान अल्लाह, उलमा ने वर्ड्स की काउंटिंग की है और उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल मिड है सूरत का, वलियतलतफ जो वर्ड है वो मिडल है कुरान का। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक का स्टार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह से और उसका मिड भी अल्हम्दुलिल्लाह से है। तो मिडल में है ना ये सूरा।